कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत आज की प्रवचन कक्षा में। गजेंद्र की समर्पण स्तुति श्रीमद्भागवतम आठवां स्कंध तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 22, 23 एवं 24। तो पहले दो श्लोक मैं उच्चारण करूंगा और फिर उसके बाद जो श्लोक संख्या 24 है वो हम सब मिलकर फिर उच्चारण करेंगे। यस्य धम्मादयो देवा वेदा लोका चराचरा नाम रूप विभेदेना फलग्व्याचा कल्याकृता यथा अर्तिशो अग्ने सवितुर्भस्तयो निर्यान्ति संयान्ति असत्कृत स्वरोचिषा। तथा यतोऽयं गुंसं प्रवाहो बुद्धिर्मनाखानि शरीरसर्गा। सवै न देवा सुरमार्तकर्यां न ईस्त्रि न षण्डो न पुमान जन्तु नायं गुणाकर्म न सन्न चासन् निषेदशेषो जयतादशेषा। स वै न देवा सुरमार्तकर्या न ईस्त्रि न षण्डो न पुमान जन्तु नायं गुणाकर्म न सन्न चासन् निषेदशेषो जयतादशेषा। स वै न देवा सुरमार्तकर्या न ईस्त्रि न षण्डो न पुमान जन्तु नायं गुणाकर्म न सन्न चासन् निषेदशेषो जयतादशेषा। स वै न देवा सुरमार्तकर्या नाशन्दो न पुमान जन्तु नायं गुणाकर्म न सन्न चासन् निषेदशेषो जयतादशेषा। स वै न देवा सुरमार्तकर्या नाशन्दनपमान जन्तु नायं गुणाकर्म न सन्न चासन् निषेदशेषो जयतादशे। धन्यवाद आप सभी का। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की यस्य भगवान का ब्रह्म आदय ब्रह्मा इत्यादि देवता देवाः तथा अन्य देवता, वेदः वैदिक ज्ञान, लोकः विभिन्न पुरुष, चर अचरा जड़ यथा वृक्ष तथा चेतन, नाम रूप विभिन्न नामों तथा विभिन्न रूपों के, विभेदेन ऐसे विभागों द्वारा, फलक्व्या कम महत्वपूर्ण, चा ही कलया अंशों से, कृताः उत्पन्न यथा जिस तरह, अर्चिषाः स्फुलिंग अग्ने अग्नि के, सवितुः सूर्य से, गभस्तया चमकीले कण, निर्यान्ति बाहर निकलते हैं, संयान्ति तथा प्रवेश करते हैं, अस्कृता पुनः पुनः, स्वारोचिषा अंश रूप तथा उसी प्रकार से, यतः भगवान जिससे, अयम यह गुण संप्रवाह प्रकृति के विभिन्न गुणों का निरंतर प्रकट्य, बुद्धि मन बुद्धि तथा मन, खानी इंद्रिया शरीर शरीर की स्थूल तथा सूक्ष्म, सर्गा विभाग, सा वह परमात्मा, वह निसंदेह ना नहीं है, देव देवता, असुर असुर, मर्त्या मनुष्य, तिर्यक पक्षी या पशु, ना ना तो स्त्री स्त्री, ना ना तो शंडा क्लीप, ना ना तो कुमान मनुष्य, ना ना तो जंतु जीव या पशु, ना अयम ना तो वह है, गुणा भौतिक गुण कर्म सकाम कर्म, ना ना तो सत प्राकट्य, ना ना तो चा भी असत अप्रकट्य, निषेध नेति नेति का भेदभाव, शेषा वह अंत है, जयतात उनकी जय हो, अशेषा जो अनंत है। अनुवाद करकर भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग साम ऋग यजुर् तथा अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य की चमकीली किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रिया स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों के सतत रूपांतर विकार, ये सभी भगवान से उद्भूत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। वे ना तो देव हैं, न दानव, न मनुष्य, न पक्षी या पशु हैं। वे ना तो स्त्री या पुरुष या क्लीम हैं, और ना ही पशु हैं, ना ही वे भौतिक गुण सकाम कर्म प्रकट्य या अप्रकट्य। वे नेति नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द है, और वे अनंत हैं, उन भगवान की जय हो। सुनिए, ये भगवान की असीम शक्ति का संक्षिप्त वर्णन है। परम पुरुष अपने अंशों को प्रकट करके विभिन्न अवस्थाओं में कर्म करते हैं और ये अंश उनकी विभिन्न शक्तियों पर राष्ट्र शक्ति विविधाय शूरते के रूप में एक साथ भिन्न भिन्न रूप में स्थित है। प्रत्येक शक्ति सहज रूप से कार्यशील है, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा। अतः भगवान अनंत है, ना तक समस्त अभ्याधिकष्ट दृश्यते, ना तो कुछ उनके तुल्य है ना कोई वस्तु उनसे बढ़कर है। यद्यपि वे अनेक प्रकार से अपने को प्रकट करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं कुछ भी नहीं करना होता, ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते, क्योंकि उनकी असीम शक्तियों के विस्तार से ही सब कुछ किया जाता है। ओम ज्ञान पुरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप प्रदानयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्री उदारपदकमलं श्री गुरुं नृसिंहवांच श्री रूपं सागर जातं सहग रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं द्वैतं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सैवं ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण कर्णा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिता। तो गजेंद्र जो है प्रार्थना कर रहे हैं, पिछले दिन हमने भक्त थे, अभी पशु योनि प्राप्त होने के पश्चात भी कितने सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। तो भक्ति जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। जब भी भगवान का गुणगान या भगवान की स्तुति की जाती है तो वो कोई भावुकता पर आधारित नहीं होती। हम बार बार देखते हैं शास्त्रों में भगवान की स्तुति की जाती है तो वो सत्तत्व ज्ञान पर आधारित होती है। भाव का भी महत्व है भक्ति में, लेकिन वो भाव या भावुकता जो है वो तत्व ज्ञान पर आधारित होती है, होनी चाहिए। भगवान को मानना और भगवान को जानना, यदि भगवान को जानेंगे नहीं, बिना जाने यदि हम भगवान को माने उसका कोई ज्यादा विशेष महत्व नहीं होता, उससे कोई विशेष लाभ नहीं। इसलिए भगवान को जानना अति आवश्यक है और इसी उद्देश्य से भगवान ने सारे शास्त्रों की जो है हमारे लिए दिए हैं सारे शास्त्र, ताकि हम इनके माध्यम से भगवान को जाने तत्व से। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वता, तत्व से भगवान को जानता है। भगवान कहते हैं उसका फिर पूरा जन्म संसार में नहीं होता। तो भगवान को तत्व से जानने का महत्व है। तो गजेंद्र भी देखिए कितने सुंदर तत्व ज्ञान के ऊपर आधारित जो है प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान को जान करके और फिर आइए हम भगवान की सेवा करें। जो जान जाएगा वो सेवा करेगा ही निश्चित रूप से। एक बार भक्त ने प्रश्न किया हमारे वर्तमान आचार्य उनसे कि कई बार जो है व्यक्ति जान लेता है फिर भी कर लेगी फिर भी भक्ति नहीं करता, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया जो जान लेगा वो भक्ति क्यों नहीं करेगा, वो तो करेगा, इसका मतलब उसने नहीं जाना। अभी जो जान लेगा वो तो निश्चित रूप से भगवान की शरण में आएगा, और जानने के लिए भी जो है भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई प्रोसेस ये प्रक्रिया नहीं है भगवान को जानने की। भगवान कह रहे मुझे कोई जान नहीं सकता, मुझे जानना असंभव है क्योंकि मैं सबका कारण हूं। तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने कारण के स्रोत को या अपने कारण को स्वतंत्र रूप से नहीं जान सकता। तो भगवान को जानने के लिए भी भगवान की शरण में ही आना पड़ेगा, भक्त अम्मा भी जानना थी। और जो जान जाएगा जितना भगवान अनुमति देंगे अपने बारे में जानने की उतना, पूर्ण रूप से तो भगवान को नहीं जान सकते, तो वो निश्चित रूप से भगवान के प्रति शरणागत होगा। और शरणागति में यदि कमी है, इसका मतलब अभी हमारी जानकारी में कमी है, अभी हम उतना नहीं जान पाए जिससे कि हमारा भगवान के प्रति शरणागत होने के लिए हमारे को प्रेरणा मिले। तो इसलिए भगवान को जानना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ठीक से हम ये भी नहीं जान पाते कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। जो शास्त्र में जो प्रार्थनाएं दी गई हैं उनको दोहरा सकते हैं। कई हमारे लगता है कि ये जो प्रार्थनाएं हैं तो बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, या हमारे को बड़ा मतलब हैवी फिलॉसफी है, ऐसे बोलते हैं, जैसे मूर्तिमान वेदों के द्वारा सीखी है। तो इन पर हम के बजाय ध्यान नहीं देते प्रार्थनाओं पर, लीलाओं में ज्यादा रुचि, वो भी अच्छा है, लेकिन ये प्रार्थना है तत्व ज्ञान से भरी है। जैसे कि ये जो आज के जो श्लोक जो गणेन्द्र जो बोल रहे हैं प्रार्थना में, ये बड़ा गूढ़ ज्ञान है, इसको प्रार्थना को ही समझ पाना बड़ा कठिन लगता है। तो भगवान जो है वो अपने आप में अनूठे हैं, ना तो उनके तुल्य कोई है ना उनके बराबर, असंपूर्ण कोई उनकी वो किसी कैटेगरी में नहीं आते, वो उनकी अपनी अलग से एक श्रेणी है, वो किसी जाति प्रजाति से संबंधित नहीं है। भगवान केवल भगवान है बस, और वो कुछ नहीं है उसके अलावा, केवल भगवान, वो सब कुछ है। लेकिन यदि हम उसको किसी भगवान को किसी जाति या प्रजाति से या किसी संबंध, वो ऐसा नहीं है, भगवान केवल भगवान, भगवत तत्व अपने आप में बिल्कुल अलग अनूठा है, इस भौतिक संसार से परे, सभी प्रकार की व्याख्याओं से परे। जैसे ज्ञानी लोग जो है, ज्ञानी लोगों तरीके क्या है, वो कहते हैं नेति नेति, नेति मतलब ना इति, ये नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, नहीं ये भी नहीं, इसको छोड़ो, ये भी नश्वर है, इसको छोड़ो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसे करते करते जो बच गया वो सोचते ये परम सत्य है। पर इस प्रकार से कभी वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में। ये गलत तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, नेति नेति। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, समस्त सृष्टि में जो कि भगवान से अभिन्न हो। भागवतम के दूसरे स्कंद में भगवान बोलते हैं, भगवान के विषय में ऐसा बोला जा रहा है, रिते अर्थम यत प्रीतिये ना प्रीतिये चात्मनि तद विद्याद आत्मानो माया यथा भासो यथा तमा। इसमें भगवान ने उच्चारण करते हैं श्लोक ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा, जो भी सार प्रतीत होता है यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। उसी श्लोक से पहले वाले श्लोक भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि से पहले भी मैं था, सृष्टि के समय भी मैं हूं, और जब सृष्टि का विलय हो जाएगा तब भी केवल मैं ही रहूंगा। तो परम सत्य तो भगवान ही है केवल, और ये सारी सृष्टि चर अचर देवता असुर दानव कुछ भी, सबके कारण केवल भगवान है। और क्योंकि भगवान सबके कारण है इसलिए सब कुछ भगवान से अभिन्न है। इसलिए जब भी भगवान के मूल संबंध को भुला दिया जाता है, किसी वस्तु को जब हम भगवान से संबंधित ना होकर के भगवान स्वतंत्र रूप में देखते हैं, यह धारणा ही अपने आप में माया कहलाती है, इसी को माया कहते हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान से संबंधित है, लेकिन जब उसको भगवान से हटके देखते हैं या उसको भगवान के सेवा में नहीं लगाते हैं, स्वतंत्र समझते हैं, तो यह धारणा ही अपने आप में माया कहलाती है। यहां पर भी आगे श्लोक में भी सब कुछ भगवान है, लेकिन फिर भगवान से अलग है, भगवान ये नहीं है, भगवान वो नहीं है, भगवान कुछ भी नहीं है, भगवान सब कुछ भगवान से आया है, लेकिन भगवान उससे पृथक है। सारा आध्यात्मिक और भौतिक जगत भगवान से भूत होने के कारण भगवान की शक्ति का प्राकट्य, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी भगवान मान करके पूजा करना शुरू करें। सब कुछ भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान फिर उससे अलग है। यही जो है सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने हमारे संप्रदाय में अचिंत्य बताया। जैसे कि भगवद्गीता के 9वें अध्याय के चौथे पांचवें छठे श्लोक में इसको भगवान बता रहे हैं। मैं ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानी ना चाहम तेषु अवस्थिता। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। सब कुछ भगवान से भूत होने के कारण भगवान कह रहे मुझ में ही है, मुझसे अभिन्न है, लेकिन भगवान उनमें नहीं है, भगवान उनसे पृथक रहते हैं अपने धाम में अवस्थित, उनका व्यक्तित्व अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि सर्वत्र फैले रहने के कारण अब भगवान का अलग से अपनी व्यक्तिगत सत्ता नहीं रही। प्रभु समझाते हैं उसी श्लोक के तात्पर्य में, जिस प्रकार से एक राजा जो होता है उसकी सरकार जो है उसके पूरे राज्य में व्याप्त है, अपनी सरकार अपने दंड देने की जो शक्ति है, जो शासन करने की शक्ति है, उसके माध्यम से राजा हर जगह उपस्थित है हर विभाग में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो अपने महल में अलग से उपस्थित है। उसकी सरकार राजा से अभिन्न है, लेकिन राजा जो है वो अपने व्यक्तिगत रूप से अपने महल में है, वो उसकी सरकार राजा नहीं है लेकिन सरकार राजा से अभिन्न है। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु भगवान से अभिन्न होने के कारण, भगवान की शक्ति होने का प्रकट होने का भगवान से अभिन्न है लेकिन भगवान नहीं है, भगवान अपने धाम में अवस्थित है। गुण है लेकिन जितना हम समझ सके उतना तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि भगवान को समझना इतना सरल नहीं है। तो भगवान कहीं भी और किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, उनके ऊपर कोई ऐसा कोई नियम का बंधन नहीं है कि एक नियत समय में भगवान को प्रकट होना है या केवल मनुष्यों के समाज में भगवान को प्रकट होना है। भगवान कहीं भी, मत्स्य अवतार कश्यप अवतार भगवान का हुआ लेकिन भगवान जलचर नहीं है, नरसिंह अवतार हुआ वराह अवतार हुआ लेकिन भगवान पशु नहीं है, मोहिनी अवतार हुआ भगवान का लेकिन भगवान स्त्री नहीं है। यानी कि ये जो भौतिक जो हमारी धारणा है स्त्री पुरुष की, भगवान ना तो वैसे स्त्री है ना वैसे पुरुष है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान परम पुरुष है, दिव्य पुरुष। हमारे पास जो धारणा है पुरुष की, भगवान वैसे पुरुष नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैं सबका पिता हूं, इसलिए उनको परम पुरुष बोला जाता है। लेकिन यहां जो बताया कि ना स्त्री है ना पुरुष है ना क्लीव है ना पशु है ना जंतु है, तो हमारी जो भौतिक धारणा है इन वस्तुओं के बारे में, भगवान ऐसे नहीं है। भगवान किसी जाति या प्रजाति के बीच में सीमित नहीं है, भगवान केवल भगवान है, बस भगवत तत्व। जैसे मकड़ी जो है अपना जाला स्वयं बुनती है और फिर खुद ही समेट लेती है उसको उसकी इच्छा, इसी प्रकार से भगवान जो सृष्टि को करते हैं बार बार और फिर बार बार इसको समेट लेते हैं, केवल उनके श्वास काल तक ही ये सृष्टि रहती है, बार बार सृष्टि होती है, बार बार इसको समेट लेते हैं, बार बार होती है, बार बार इसको समेट लेते हैं। क्या प्रयोजन है इसका, क्या उद्देश्य है? श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि सृष्टि करने का उद्देश्य भगवान का केवल एक है कि जो बद्ध जीव हैं, जो विद्रोही जीव हैं, जिन्होंने भगवान की सत्ता स्वीकार नहीं की, अपने आप को भगवान का दास नहीं माना जिन्होंने, तो उनको भगवान एक अवसर प्रदान करते हैं अपना शुद्धिकरण का और वापस उनके धाम, भगवान के धाम वापस जाने के लिए। इस सृष्टि का केवल एकमात्र उद्देश्य है ये। हम जैसे विद्रोही जीवों के लिए भगवान ने सृष्टि को रचा, बार बार करते हैं देखिए, ऐसा नहीं कि भगवान कहते ठीक है अब इनको पढ़े रहने दो, इतनी बार हो चुका, नहीं मानते। तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये भगवान का प्रेम है जीवों के प्रति, तो बार बार उनको अवसर प्रदान करते हैं, बार बार। तो बार बार सृष्टि भगवान से उद्भूत होती है, बार बार भगवान में मिला जाता है इसका भूतवा भूता पर लेते हैं। और उद्देश्य केवल एक ही है, जीवों को सुअवसर प्रदान करना कि वो अपना शुद्धिकरण करके इस दुखले दुखाले संसार से वापस एक शाश्वत आनंद युक्त जीवन जो है प्राप्त करें, भगवान के धाम वापस जाकर के, जो उनका वास्तविक घर है। तो आज के ये जो श्लोक थे इनके विषय में यही विराम देंगे, क्योंकि आज श्री माध्वाचार्य जी का तिरुभाव भी है, तो थोड़ा उनके बारे में जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे। विशेष चर्चा नहीं, जैसा कि प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में बड़ा अच्छा उनके चरित्र के बारे में लिखा है, तो थोड़ा सा उसी में से पढ़ेंगे। ये मध्य लीला का 9वां अध्याय है, प्रयार संख्या 245 में प्रभुपाद ने दिया है, हम इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ रहे हैं। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडीपी पर पहुंचे, जहां तत्ववादी के नाम से जाने वाले दार्शनिक रहते थे। वे वहां भगवान कृष्ण के आर्चे विग्रह को देखकर भाव विवल हो उठे। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी काफी कुछ जानकारी दे रहे हैं मध्वाचार्य जी के बारे में। श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म उडीपी के निकट हुआ, जो दक्षिण भारत के दक्षिण कन्नड़ जिले में सह्याद्री के पश्चिम में स्थित है। ये दक्षिण कन्नड़ प्रांत का मुख्य शहर है और उडीपी से दक्षिण की ओर स्थित मंगलोर शहर के निकट है। ये कर्नाटक में ये स्थान है। उडुपी शहर के निकट पाच का क्षेत्र है, जहां महादेवाचार्य ने शिवाली ब्राह्मण वंश में मध्य गह भट्ट के पुत्र रूप में 1040 शकाब्द अर्थात 1118 ईस्वी में जन्म लिया। कुछ लोगों के मतानुसार उनका जन्म 1160 शकाब्द 1238 ईस्वी में हुआ। तो अधिकांश लोग इसी को जो है प्राथमिकता देते हैं कि उनका जो जन्म है वो 1238 ईस्वी में, सन 1238 में हुआ। तो बचपन में माध्वाचार्य वासुदेव कहलाते थे, ये उनका बचपन का नाम था, और उनके विषय में कुछ अद्भुत कहानियां कही जाती हैं। कहा जाता है कि उनके पिता पर अधिक ऋण था और माध्वाचार्य ने इमली के बीजों को सिक्कों में बदलकर ऋण चुकाया। अभी 5 ही वर्ष के थे तो उनका जनेऊ संस्कार किया गया, उनका दीक्षा हुआ। मणिमान नामक एक असुर सांप के रूप में उनके घर के पास रहता था, जिसे मध्वाचार्य ने 5 वर्ष की आयु में अपने बांव पांव के अंगूठे से मार डाला। तो मध्वाचार्य वायु के अवतार है, इसी प्रकार से वायु का अवतार होने की वजह से महाबली भीम और हनुमान जी के तरह जो है बहुत बलशाली, बहुत ही सुडौल जो है उनका विग्रह था। जब उनकी माता चिंतित होती तो वे एक छलांग में उनके सामने प्रकट हो जाते। वे बचपन से ही प्रकांड विद्वान थे और उनके पिता के ना चाहने पर भी उन्होंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा। संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने श्रृंगेरी मठ के प्रमुख विद्याशंकर से शास्त्र किया। विद्याशंकर उनकी उपस्थिति में वास्तव में बौना हो गए। माधवाचार्य सत्य तीर्थ के साथ बद्रिका आश्रम गए, वहां पर व्यासदेव से उनकी भेंट हुई और उन्होंने भगवद गीता पर अपना भाष्य उन्हें सुनाया। इस प्रकार वे व्यासदेव से अध्ययन करके प्रकांड पंडित बन गए। तो पूरे भारत की उन्होंने जो यात्राएं की और खासतौर से जो निराकारवादी निर्विशेषवादी जो नास्तिक लोग थे उनको जो है जगह जगह साक्षात करके उनको पराजित किया और भगवान विष्णु की भक्ति को स्थापित किया और बद्रिका आश्रम गए व्यास देवी से भेंट करने के लिए, दर्शन करने के लिए 2 बार गए। और चल व्यास देवी ने स्वयं उनके द्वारा लिखित भगवद गीता की टीका का अनुमोदन किया, तो इसलिए उनको व्यास देवी जी के शिष्य माना जाता है। बद्रिका आश्रम से आनंद मठ आने के समय तक मध्वाचार्य ने भगवद गीता पर अपना भाष्य पूरा कर लिया था। उनके साथी सत्य तीर्थ ने समूचा भाष्य लिख दिया। बद्रिका आश्रम से लौटने पर माध्वाचार्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित गंजाम गए। यहां उनकी भेंट शोभन भट्ट तथा स्वामी शास्त्री नामक 2 पंडितों से हुई। बाद में दोनों माध्वाचार्य गुरु शिष्य परंपरा में पद्मनाभ तीर्थ तथा नरहरि तीर्थ के नाम से विख्यात हुए। उडीपी लौटने पर वे कभी कभी सागर में स्नान करते थे, तो ऐसे ही अवसर पर उन्होंने एक स्तुति की रचना की जो 5 अध्यायों में है। एक बार जब समुद्र तट पर बैठे हुए वे भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न थे, तब उन्होंने देखा कि द्वारका के लिए सामग्री ले जाने वाला एक मालवाही जहाज संकट में है। तो एक जहाज जा रहा था द्वारका की ओर, तो वो फंस गया था समुद्र में। उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे वे जहाज समुद्र तट पर जा लगा और इस तरह वह बच गया। तो उन्होंने उसको जहाज को बचाया। तो जहाज के मालिक उन्हें कुछ भेंट स्वरूप देना चाहते थे, किंतु उन्होंने मात्र कुछ गोपी चंदन लेना स्वीकार किया। तो जहाज में गोपी चंदन था, बड़े बड़ी शिलाएं थी, तो उन्होंने खाली गोपी चंदन की एक बड़ी शिला लेना स्वीकार कर लिया। जब चंदन का एक बड़ा ढेला उनके पास लाया जा रहा था तो वह बीच से टूट गया और उसमें भगवान कृष्ण का एक बड़ा आर्च विग्रह निकला। तो इस आर्च विग्रह का नाम है नर्तन गोपाल, जैसा कि आगे प्रभु बता रहे हैं। इसमें उडीपी कृष्ण के नाम से आज भी जो है ये स्थापित है उडीपी में। आर्च विग्रह एक हाथ में डंडा और दूसरे में खाद्य पदार्थ लिए था। जो ही माधवचरण ने इस रूप में कृष्ण के आर्च विग्रह को प्राप्त किया, उन्होंने एक स्तुति लिखी। यह आर्च विग्रह इतना भारी था कि 30 व्यक्ति मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते थे, इतना भारी विग्रह था। फिर भी माधवचरण स्वयं इस आर्च विग्रह को उडीपी ले गए, वो खुद उठा लिया अकेले, उसको उठा के ले। माधवचरण के 8 सन्यासी शिष्य, उनके 8 मठों के आचार्य बने। माधवचरण के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार उडीपी में कृष्ण की पूजा इस समय भी की जाती है। तब माधवचरण दूसरी बार बद्रिका आश्रम गए। जब वे महाराष्ट्र से होकर जा रहे थे तब एक स्थानीय राजा जनता के कल्याण हेतु एक विशाल सरोवर खुदवा रहा था। क्योंकि माधवचरण अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, अतः उन्हें भी इस खुदाई में उसकी सहायता करनी पड़ी। कुछ समय के बाद माधवचरण ने राजा से भेंट की और उसे उस कार्य में लगाया और अपने शिष्यों के साथ वे आगे बढ़ गए। तो उन्होंने बताया कि हमें तो हमारा उद्देश्य दूसरा है, तो आगे चले गए राजा को उसमें लगाकर। गांग प्रदेश में प्राय हिंदुओं तथा मुसलमानों में झगड़े होते रहते थे। हिंदू नदी की एक ओर थे और मुसलमान दूसरी ओर। सांप्रदायिक तनाव के कारण नदी पार करने के लिए कोई नाव उपलब्ध नहीं थी। मुसलमान सैनिक हमेशा यात्रियों को दूसरे किनारे आने से रोकते थे, किंतु माधवचरण ने इन सैनिकों की कोई परवाह नहीं की। अतः इसके बावजूद जब वे नदी पार करके दूसरी ओर पहुंचे और सैनिकों से मिले तो उन्हें राजा के पास लाया गया। मुस्लिम राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें एक राज्य तथा कुछ धन देना चाहा, किंतु माधवचरण ने इसे लेने से मना कर दिया। मार्ग पर जाते समय कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु अपने शरीर बल से उन्होंने उन सबको मार डाला। जब उनके साथी सत्य तीर्थ पर एक बाघ ने आक्रमण किया तो माधवचरण ने अपने बल से दोनों को अलग किया। जब वे व्यासदेव से मिले तो उनसे उन्हें अष्टमूर्ति नामक शालग्राम शिला प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने महाभारत का सशक्तिकरण किया। माधवचरण की भगवत भक्ति तथा उनका प्रकांड पांडित्य भारत भर में विख्यात हो गया। फलस्वरूप शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ के स्वामी कुछ बेचैन हो गए। उस समय शंकराचार्य के अनुयायी माधवचरण की उभरती शक्ति से डरकर वे उनके शिष्यों को नाना प्रकार सताने लगे। वे सिद्ध करने का भी प्रयास करने लगे कि माधवचरण की गुरु शिष्य परंपरा वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं। शंकराचार्य के मायावाद दर्शन का एक अनुयायी जिसका नाम पुंडरीकपुरी था, माधवचरण से शास्त्रार्थ करने आया। कहा जाता है कि माधवचरण की सारी पुस्तकें चुरा ली गईं, किंतु बाद में कुंभल के शासक राजा जय सिंह की सहायता से वह ढूंढ ली गई। शास्त्रार्थ में पुंडरीकपुरी माधवचरण से परास्त हुआ। विष्णु मंगल निवासी का त्रिविक्रमाचार्य नामक एक महापुरुष मध्वाचार्य का शिष्य बन गया और बाद में उसके पुत्र नारायणाचार्य ने श्री मध्य विजय की रचना की। श्री त्रिविक्रमाचार्य के देहांत के बाद नारायणाचार्य के छोटे भाई ने संन्यास ले लिया और वह विष्णु तीर्थ कहलाया। उस समय यह ख्याति फैली थी कि पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य की शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। तभी कंडंजरी नामक एक व्यक्ति था जो इसके लिए प्रसिद्ध था कि उसके पास 30 व्यक्तियों के बराबर शक्ति है। मध्वाचार्य ने अपने पांव के अंगूठे को जमीन पर रखकर उस व्यक्ति से कहा कि अंगूठे को हटा दे, किंतु वह बलशाली व्यक्ति अपने प्रयासों के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाया। श्री मध्वाचार्य ने 80 वर्ष की आयु में ऐत्रेय उपनिषद का भाष्य लिखते हुए इस भौतिक संसार से विदा ली। अधिक जानकारी प्रमुख बता रहे हैं मध्वाचार्य जी के लिए, वो मध्य विजय ग्रंथ में जो है दी गई। तो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं मध्वाचार्य जी, हमारा संप्रदाय कहलाता है ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, और मध्वाचार्य जी ने शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत स्थापित किया कि जीव और भगवान दोनों अलग व्यक्तित्व हैं, लेकिन जो जीव है वो भगवान का दास है, भगवान का अंश है, लेकिन हमेशा अलग है, शाश्वत सनातन अंश है और अलग ही रहेगा। और महाप्रभु ने भी जो है मध्वाचार्य जी की शिक्षाओं का अनुमोदन किया और उन्हीं शिक्षाओं पर जो आधारित है हमारा संप्रदाय जो कि आगे चल रहा है। श्री मध्वाचार्य जी की जय। श्री मध्वाचार्य तिर्भवतिथि महामहोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। समृद्ध भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे।